نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کی چار بنیادیں، اس میں سے معاملات کے ٹاپک میں آج ہم بہت اہم موضوع کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ مقاصد شریعت. شریعت کے پانچ مقاصد ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان ہوگا تو پانچ چیزوں پہ اسلام اس کو سیکیورٹی دیتا ہے. پھر دوسری بات کرتی ہوں آج کی زبان میں لوگوں کی سمجھ کے لیے، انشورنس کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں گارنٹی چاہیے، انشورڈ کر دو، بیمہ کر دو. آپ اپنی لفظوں میں کہہ لیں کہ شریعت انسان کی پانچ چیزوں کی انشورنس کرتی ہے. پھر کہتی ہوں اور آسان کرتے ہوئے کہ شریعت انسان کی پانچ چیزوں کا تحفظ کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے اپنے بندے سے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس دنیا میں سکون، امن اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرے. تو پانچ مقاصد شریعت کے، اور پھر اس کو تھوڑا سا آسان کر دوں کہ شریعت سازی کے وقت اللہ تعالیٰ نے کن نکات کو سامنے رکھا. پھر اس کے پیچھے تھوڑا سا چلے جائیں تو بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ پرسیپشن دیتے ہیں، ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں، کہ اسلام ایک نان انسانی ریلیجن ہے اور کچھ اس قسم کی خرافات. لیکن اگر آپ کسی بھی ایسے شخص کو جو اسلام کے بارے میں بیکار سوچے رکھتا ہے، اگر یہ ٹاپک بتا دیں اس کو کہ دیکھو، کسی ملک میں رہتے ہوئے ایک حکومت اپنے شہریوں کی جان مال کی جس طرح حفاظت کرتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اور اسلام کی شریعت کو بناتے وقت اللہ تعالیٰ نے ان نکات کو نظر میں رکھا، جس میں پہلی چیز کیا تھی کہ ہر بندے کی جان محفوظ رہے. یعنی دنیا میں بندہ پھرے تو اس کو بالکل ایک لمحے کے لیے بھی یہ دھڑکا نہ لگے کہ کوئی میری جان لے لے گا، کوئی مجھے گولی مار دے گا، کوئی راہ چلتے ہوئے میں اپنے آپ کو پتہ نہیں کہاں لے جاؤں گا، کہاں کر دوں گا، یہ نہ ہو. یہ پہلی چیز ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز جس میں ایک انسان کی اسلام نے تحفظ کی گارنٹی لی ہے، وہ کیا کہ اس کی عزت کی حفاظت، آبرو کی حفاظت، ایک بندے کی جان مال. تیسری چیز مال، اس کی منی بہت سیکیورڈ ہو. اتنا خوبصورت معاشرہ کہ کوئی کسی کا ایک ڈالر بھی نہ کھائے، کوئی جھوٹ بول کر 10 روپے بھی کسی سے نہ ہتھیا لے. اور چوتھی چیز جو ہے وہ عقل کی حفاظت ہے، کہ انسان کوئی ایسی حالت میں نہ چلا جائے کہ جس سے اس کی عقل ہی ماری جائے، جس کے بعد اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی ہوش نہ رہے کہ میں کدھر بیٹھا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں گا. یعنی آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے پھر جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے نا، اس میں آپ دیکھیں گے ان پانچوں قسم کی حفاظتوں کا ذکر آتا ہے. مثلا شراب کو حرام کیوں کیا گیا؟ تاکہ عقل محفوظ رہے. نشے کو حرام کیوں کیا گیا؟ تاکہ ایک انسان کی عقل محفوظ رہے. اور پانچواں مقصد اس کے دین کی حفاظت، اس کو اپنے دین پر عمل کرنا آسان ہو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پہ عمل کر سکے. تو یہ پانچوں چیزوں کی حفاظت انگلیوں پہ، پانچ انگلیوں پہ لکھ لیں، جان، عزت، مال، عقل اور دین، ٹھیک ہے. یہ پانچ چیزیں جو ہیں، آپ دیکھیں گے کہ پانچوں چیزوں کی حفاظت، یعنی جان، عزت، مال، عقل اور دین کی حفاظت میں امتیاز نہیں ہے کہ یہ مسلم کے ہیں یا غیر مسلم کے. یہ بھی نوٹ کریں، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کی جانیں، مال، عزتیں اور ان کی عقلیں محفوظ رہیں اور باقی رہیں. یہاں اس سے ایک سسٹر کا سوال آ گیا جواب، کہ جنہوں نے پوچھا تھا آپ میں سے کل کہ اگر کوئی غیر مسلم کو ایسی چیز منگوائے جو ہمیں لگتا ہے کہ اس کے لیے ٹھیک نہیں، تو کیا ہم اس کے لیے لے آئیں، مثلا ڈرگز، شراب. تو جواب مل گیا کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ کسی کی عقل کو مت مارے، کیونکہ ایک نان مسلم کی عقل ماری گئی تو وہ بھی تو انسان کو نقصان دے سکتا ہے نا، وہ بھی تو ایک مسلمان کو نقصان دے گا، ٹھیک ہے. جس طرح سے ایک مسلمان کی جان معزز ہے، ویسے ہی ایک غیر مسلم کی جان بھی محترم ہے. ایسے ہی آبرو، ایسے ہی مال اور ایسے ہی دین، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ جو میرے ذہن میں آیا وہ بتا دوں، کہ اگر مسلمان کی بھی جان محترم ہے تو غیر مسلم کی بھی ہے. تو پھر جب قصاص کی بات کی جاتی ہے تو مسلم کی بات کیوں کی جاتی ہے؟ من قتل مومنن، سورت نساء میں آپ نے پڑھا، سورت مائدہ میں آپ نے قتل خطا اور قتل عمد کے جب پڑھے تو اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ مومن کی بات تھی، تو فرق سمجھ لیجئے. ایک مشینری ہونے کے ناطے تو انسان برابر ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، اللہ سے پیار کرتا ہو یا اللہ کو نہ مانتا ہو، لیکن اس مشین کا استعمال فرق ہے. ایک مسلمان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، دن میں وہ 100 دفعہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا تذکرہ کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے روزہ بھی رکھا ہو. اب ایک مسلمان کو جب مارتا ہے کوئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ نیکیوں کا ایک سلسلہ بھی مر گیا، اس کی نمازیں بھی فوت ہو گئیں. اس کے برعکس کافر جب، وہ تو اللہ کو نہیں مان رہا، کافر کو تو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں، تو وہ بس ایک مشین کی موت تھی. آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ آپ کے کچن میں 2 طرح کی مشینیں ہیں، ایک وہ ہے جو آپ دن میں 2-3 دفعہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کھانا پکا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اس کو یوز نہ کر لیں، ٹھیک ہے. ایک دوسری مشین ہے جو صرف آپ کو بکر عید پہ ضرورت پڑتی ہے، یا کبھی ایک ونس اوائل، یا ویسے ایک شو پیس رکھا ہوا تھا، ڈیکوریشن پیس تھا بس کوئی چیز. اب جب وہ مشین ٹوٹتی ہے جو آپ کو استعمال نہیں کرنے ہوتی تھی، بس رکھی ہوئی تھی، شو پیس تھی، تو آپ کو وہ افسوس نہیں ہوگا جو آپ کی وہ مشین ٹوٹنے پہ ہوگا جو دن میں آپ کی کئی دفعہ استعمال ہوتی تھی، کیونکہ اس کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی آپ کے کئی کام رک گئے. تو مومن اس دنیا میں اللہ کے دین کا پرچار کرتا ہے، مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کا نمائندہ ہوتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان میں رنگ بھرتا ہے، تو ایک مومن کو قتل کرنا اللہ کے کریشن پلان کو ختم کرنا ہے. لیکن اب یہ باتیں کہتے ہوئے میرے دل میں درد محسوس ہو رہا ہے، کیا واقعی سارے مسلمان مومن ہیں؟ کیا ہر مسلمان جب مرتا ہوگا یا اس کی دنیا سے واپسی کا سفر ہے تو فرشتے کہتے ہوں گے ہائے اتنا اچھا انسان مر گیا، اتنی کارآمد مشین ختم ہو گئی؟ تو عمل اور غیر عمل، عامل اور غیر عامل کا بھی فرق ہے، لیکن اوورال ایک مسلمان کی جان پھر کافر کی جان سے زیادہ مضبوط ہے. میری نظر میں کافر کی جان نہ لینے کی ایک ہی وجہ ہے کہ ابھی اس کو موقع دو، شاید وہ اسلام قبول کر لے، شاید وہ توبہ کر لے، شاید اس کو اپنے رب کی معرفت ہو جائے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ چیز سامنے آ گئی ہمارے، اس سے آپ کو لگا کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار ہے، الحمدللہ. پھر اس میں ایک بات آئی ہے دین کی حفاظت، کیونکہ جان کی حفاظت بہت نون ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جان کی حفاظت کے لیے تو کپڑے موٹے پہنتے، دوائیاں کھاتے، کھانے کھاتے اور کئی قسم کی ٹریننگز کرتے، رائٹ. پھر اسی طرح عزت اور آبرو کی حفاظت کیا ہے؟ کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو تانا نہ دو، کسی کی بے عزتی نہ کرو، سر محفل کسی کو رسوا نہ کر دو، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح مال کی حفاظت بھی ہمیں سب کو پتہ ہے، کیسے ہم چھپا چھپا کے چیزیں رکھتے ہیں اور کیسے بینکوں اور لاکروں کو ڈھونڈتے ہیں. پھر عقل کی حفاظت پہ بھی تھوڑی بات کر دی کہ جس سے عقل میں فتور نہ آئے، نشہ، شراب، ڈرگز، پھر اسی طرح کی وہ خرافات جس کو دیکھ کر عقل موف ہوتی ہے، کہ آپ اگر ایک گھنٹہ ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں چاروں طرف سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں میوزک چل رہا ہے، کہیں دھم 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 دھم، کہیں بیچ میں کوئی شو چل رہے ہیں، کہیں ایک دم بریکنگ نیوز آ رہی ہے، کہیں کوئی ایک کے خلاف دوسرا بات کر رہا ہے، سچ بتائیں کہ مائنڈ موف نہیں ہوتا؟ ایسے لگتا ہے کہ بندہ پریشان ہو گیا. جن لوگوں کے گھروں میں ہر وقت یہ آوازیں آتی ہیں نا، وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ جن گھروں میں یہ آوازیں نہیں آتی نا، پھر وہ کسی ایسی جگہ اگر تھوڑی دیر بھی بیٹھ جائیں تو ان کو ایسے لگتا ہے سر میں درد ہو گیا. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو میوزک کے اندر ایک تھرل ہوتی ہے نا، یہ آپ کے برین کے اوپر اثر ڈالتی ہے. آپ اپنے بچے کو ایک ہفتہ وداؤٹ اینی میوزک، وداؤٹ اینی تھنگ جس سے اس کے اندر ایک ہائپرزم آئے، اس میں رکھ کر دیکھ لیں، اور باقی آپ ایک ویک وہ کر لیں جو موسٹلی لوگ کرتے ہیں. آپ کو مزاج میں فرق دکھے گا، سوچ میں فرق دکھے گا. میں نے بہت دیکھا ہے کہ ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو شور کیوں دکھتا ہے بہت، تو بہت سارے اور بیرونی شوروں کے ساتھ آپ دیکھیے کہ اکثر، ایون یہ تو یہاں بھی ایسے ہی ہے جو ہمارے اپنے گھر ہیں، دوسروں کا تو ہمیں جانے کا اتفاق ہی کم ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ گھروں میں جسٹ فار آپ کہہ لیں جے کہ وداؤٹ اینی سینس ٹی وی چل رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھا ہے نہیں بیٹھا، چل رہا نہیں، کوئی ایون دیکھتا نہیں. بعض دفعہ لوگ بیٹھے ہوئے نا باتیں کریں تو ٹی وی نہیں بند کرتے، آواز بند کر دیتے ہیں، تو وہ ناچتی پھتکتی تصویر آتی. پہلے تو میں سوچتی ہوں یہ پانی سے چل رہا ہے، گناہ بے لذت والی بات نہیں کہ آپ فائدہ بھی نہیں لے رہے اور بجلی جلا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہر وقت گھر میں تصویریں ناچ رہی ہیں، तो बरकत कहाँ से आएगी। और फिर सोने पे सुहागा, अगर आवाजें ऊंची हैं और उसमें वो एक दूसरे पे कीचड़ उछालने लगे, लोग बातें सुने। मैंने देखा अक्सर लोग सुन भी सियासी खबरें रहे होते हैं, टॉक शो भी आजकल के अल्लाह ताला हिदायत दे वैसे, कि जिसमें किसी एक शख्सियत को बुनियाद बनाकर कीचड़ उछाला जा रहा है। तो आप देखें क्या ये इज्जत की हिफाजत है। आप एक बड़ी स्क्रीन पे बैठ के चाहे किसी सियासतदान के पड़खच्चे उड़ा रहे हैं, क्या ये आप उसकी इज्जत की हिफाजत करें? आप किसी के खिलाफ कोई ईमेल बनाकर इधर से उधर भेज रहे हैं और उसके बच्चों के करतूत दिखा रहे हैं, तो क्या ये इज्जत की हिफाजत है? वो जो मर्जी करें लेकिन आपको इजाजत नहीं है। इतने वल्गर किस्म के जोक लोग सियासतदानों के नाम पे एक दूसरे को पास आउट करते हैं, मैं सोचती हूँ इनको अगर सिर्फ ये शरीयत का मकसद समझ आ जाए कि दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी। फिर इसी तरह देखिए, बाज़ दफ़ा आपका किसी से मामला पड़ता है, बाद में बिगड़ जाता है। इस्लाम क्या कहता है कि या तो तुम साथ अच्छे तरीके से रहो या अच्छे तरीके से छोड़ दो, तस्रीहुम बे एहसान, या फिर कहा कि तुम उसके साथ रहो। लेकिन हमारा क्या हाल है, छोड़ेंगे भी तो जहां बैठे उनकी बातें शुरू करेंगे। मंगनी टूट जाए किसी की, खुद को सच्चा साबित करने के लिए कि चूंकि हम बड़े नेक थे, हमारे साथ ज्यादती हुई, बुरे लोगों से वास्ता बड़ा, हम उठते बैठते उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, ये इस्लाम नहीं है। और मैं अक्सर सोचती हूँ जो लोग बहुत बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं, आदत है, कुछ लोगों को आदत होती है, वो दूसरों की इज्जत की हिफाजत नहीं कर रहे होते। कोई तो बात होगी ना जिस पे बात करें, कुछ तो मौजे सुखन होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि आज किसकी शामत आई हुई है, और कुछ नहीं ना, राह जाते लोगों पे तबसरे, कल्चर पे बातें, माशरे पे बातें, खानदान की बातें, जिस शहर में रहते हैं वहां की बातें। तो ये बातें बातें दूसरों की इज्जत बातों से हम लेते हैं मोस्टली। फिर इसी तरह आप देखिए कि दीन की हिफाजत से क्या मुराद है, ये थोड़ा सा आपके लिए एक नया लफ्ज है। तो हर शख्स को अपने अपने दीन पर अमल करने की पूरी पूरी आजादी होगी। इनफरादी जिंदगी में कोई किसी को दीन बदलने पर ना मजबूर कर सकता है ना लालच दे सकता है। कुरान की कायद याद आ रही है, ला इकराह फिर दीन, दीन में कोई जबर नहीं, यानी किसी को दीन में बुलाने, इस्लाम की तरफ बुलाने में कोई जबर नहीं है। हाँ, इस्लाम में आगे फिर अमल करना पड़ेगा। बात वाज़ है, किसी ने नहीं कहा कि आप यहाँ आए, लेकिन आए तो यहाँ के रूल्स को मानना पड़ेगा, यही दुनिया में आने के तरीके हैं। ठीक है, क्यों मजबूर नहीं किया जा सकता? आगे ही जवाब है, कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, कि हिदायत गुमराही से अलग हो गई। अल्लाह सुबहान तआला ने हर बंदे को चार फैक्टर जैसे दे दिए कि जिसमें से किसी एक को भी यूज करे तो वो अल्लाह तक पहुंच सकता है। अल्लाह ताला ने वही दी, अल्लाह ताला ने अकल दी, अल्लाह ताला ने कायनात दी। कायनात पे गौर व फिक्र इंसान को अल्लाह ताला तक पहुंचाता है। और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला ने सबसे वादे अलस्त लिया, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये मैंने उस लंबी सी टॉक को दो जुमलों में समेटा है, जिसपे कई दफा लंबी डिटेल्ड बात हो चुकी है दरसों में भी और तफसीर में भी। हम ये नहीं कह सकते कि फलां काफिर घर में पैदा हुआ तो वो क्यों मुसलमान हो, या कल उसको क्यों जहन्नुम में डाला जाए। अल्लाह ने सारी हुज्जतें पूरी की। ठीक है, अब इसके बाद आप मैं किसी को मजबूर नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते, लालच देकर इस्लाम नहीं ले सकते किसी का, और इसी तरह से आप दीन बदलने पे मजबूर नहीं कर सकते। जाती तहकीक की बुनियाद पर मुतमईन होना, यानी कन्विंस होना, कोई इस्लाम के बारे में रिसर्च करे, इस्लाम से मुतमईन हो जाए, तो उसको लगे कि इस्लाम एक बड़ा खूबसूरत दीन है, तो फिर उस शख्स को आप इस्लाम की दावत दे सकते हैं। अगर कोई खुद मुतमईन हो के मुसलमान होता है तो हो जाए, लेकिन जबरन कहरन तमा देकर किसी को मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, ना इस्लाम से बाहर निकाला जा सकता है। और अगर ये साबित हो जाए कि किसी को लालच से इस्लाम में दाखिल करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए सजा और ताजीर है। और वो अकलियत जो जिम्मी हो, जिम्मी कौन होता है? वो नॉन मुस्लिम जो किसी मुसलमान मुल्क में रहे और जिजिया दे। जिम्मी क्या? जिसका जिम्मा ले लिया, उर्दू में बोलते हैं ना जिम्मा लेना। जैसे जैसे आप इस मुल्क में रहते हैं तो आप लीगली रहते हैं ना, आप गवर्नमेंट के पेपर्स में होते हैं, फिर गवर्नमेंट आपको कुछ पेपर्स इशू करती है, फिर उसके बाद आप टैक्स देते हैं, तो गवर्नमेंट के जिम्मे में, कल आपको कोई अजनबी हो गई तो गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। हाँ, तो इसी तरह एक मुस्लिम रियासत में टैक्स नहीं होता। आज भी आप देखें सऊदी अरब में कोई टैक्स नहीं है, आज भी दुबई में कोई टैक्स नहीं है, और बहुत सारे यूएई के कंट्रीज में टैक्स नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये एक अलग बहस छिड़ जाएगी, लेकिन आज देखा जाए तो लोगों के माल इस तरह से भी लिए जा रहे हैं। इस्लाम में सेविंग्स के ऊपर ज़कात है, अर्निंग पे कोई टैक्स नहीं। आप करोड़ों कमाएं, आप एक साल के अंदर खर्च कर देते हैं, अल्लाह के रस्तों में लगाएं, अल्लाह के दीन पे लगाएं, अपने ऊपर खर्च करें, जिसको दे, कोई एक पैनी का टैक्स नहीं है। लेकिन ये जो आज वेस्टर्न कल्चर है कि आपके पास तनख्वाह बाद में आए और टैक्स पहले कटता है, तो ये एक किस्म की सिक्योरिटीज वो लोग ले रहे हैं ना, कि ताकि आप वो पैसे दें। इस्लाम ने देखिए क्या खूबसूरत निज़ाम दिया, मैं हैरान हो रही हूँ बात करते हुए भी, कि गवर्नमेंट ने तो टैक्स काटना ही काटना है, ठीक है, ये अलग बात है कि हमारे कल्चर के लोग उसमें भी बड़ी हेरा फेरियाँ करें, लेकिन मारे ही जाएंगे ना, कहीं ना कहीं जाके पकड़े गए। लेकिन गवर्नमेंट बाय फोर्स टैक्स ले रही है, आप कह सकते हैं ना, यानी देर इज़ नो अदर चॉइस, आपके पास वो चीज़ आएगी नहीं। इस्लाम शऊर के साथ ज़कात दिलाता है, ये भी नहीं कहा कि बस साल के बाद 2.5% ही सही चलो, लेकिन ज़बरदस्ती ले लो, नहीं, लोग खुद देते थे, वो माल भेजे जाते थे, ज़कात कलेक्टर्स जाते थे, वो ज़कात के पैसे लेकर आते थे। इस्लाम बंदे को बाशऊर बनाता है। आज कोई चॉइस दे दे, हाँ चले, अपने मुल्कों की कहानी है जो आपने सुनी होंगी, चॉइस दे दे हाँ कोई, कि टैक्स दिल करता है दे दो, ना करो ना दो, कितने लोग इस मुल्क में देंगे? पाकिस्तान में तो इसकी अमली मिसालें बीसियों मौजूद होंगी, हाँ कोई भी नहीं देगा। लेकिन आपको चॉइस दी भी है ना अल्लाह ने ज़कात देने की कि नहीं, कभी कोई कानून पकड़ते हैं आपको ज़कात ना देने पे? लेकिन आप देते हैं, आप तो खुद आना पाई का हिसाब करके पूछ रहे होते हैं कितनी हो गई, क्या करूं। बस ये है इस्लाम में फ़र्क दूसरों से, इस्लाम बंदे को जिम्मेदार बनाता है, लाइबिलिटीज़ है, अंदर की अदालत ज़िंदा होती है तो बाहर की अदालतों से बंदा नहीं डरता, ठीक है। तो अब नॉन मुस्लिम किसी मुल्क में रहता है तो वो तो ज़कात नहीं देता, तो फिर ज़कात की बजाय वो जिज़िया देता है, और बहुत थोड़ी सी मिकदार होती है, ना होने के बराबर। अब जिसने जिज़िया दे दिया, आपने फरमाया जिसका हमारे साथ माहदा हो गया हो कि तुम्हारी हिफाजत हमारे ज़िम्मे है, हमारी हिफाजत तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है, मसल जंग हो जाए तो खुद लड़ेंगे, बाहर की दुनिया से तुम्हें लड़ने के लिए मजबूर नहीं करेंगे, और जंग के दौरान जिस तरह हम अपने अहले खाना रियाया, अपने बीवी बच्चों जानो माल आबरू की हिफाजत करेंगे, वैसे ही तुम्हारी भी करेंगे, और दीन में इबादत गाहों की हिफाजत भी है। बात वाज़े, यानी एक मुस्लिम रियासत अपने मुल्क में रहने वाले नॉन मुस्लिमों को मजबूर नहीं करेगी कि आप इस्लाम के लिए लड़ें। जंगों में अल्लाह के नबी ने बाय फोर्स कभी यहूद को साथ नहीं लिया, हालांकि यहूद वहां जिमी बन के रह रहे थे, क्यों? कि ये मजबूरी के सौदे नहीं होते। लेकिन इस सच्चा इस्लाम जब आता है ना, तो मुसलमान ही इतने होते हैं कि उनको दूसरों को लेके जाने की जरूरत नहीं होती। बाय हुक और बाय क्रुक का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। तो ये जो दीन की हिफाजत थी ना, इसको अगर मैं और आप एक आजकल की नॉन टर्मिनोलॉजी में बात कर ले तो आपको बात और समझ आएगी, और वो क्या है कि इस्लाम रिलीजियस फ्रीडम का कायल है, मजहबी आज़ादी। यहाँ इस मुल्क का तो मुझे इतना ज्यादा भी नहीं पता, यहाँ तो मुझे लगता है मजहब को टच ही नहीं करते ना, लेकिन अमेरिका और कनाडा में किसी बड़ी से बड़ी बात पे अगर आप सिर्फ ये जुमला बोल दें कि इट्स माई रिलीजन, वो कांपने लगेंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप जहाज में नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, उनके रूल क्या है, उनकी कंपनी के क्या, आप उन्हें कह देना कि इट्स प्रेयर टाइम नाउ, आई नीड टू प्रे, यकीन करें उनके स्टाफ को हलचल मच जाती है कि अगर हमने इनको नमाज ना पढ़ने दी तो पता नहीं जहाज ही ना गिर जाए, ये उनकी खुद्दी में डला हुआ है। लेकिन अफसोस की बात है, मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार ही नहीं करते। जहां आप लफ्ज रिलीजन बोल देंगे, छुट्टी भी मिल जाएगी। ईद के दिन कोई कंपनी किसी को काम पे रोक ही नहीं सकती, इट्स माई रिलीजियस डे, इट्स माई फ्रीडम। और अगर कोई जुम्मे की नमाज के वक्त पे कह दे किसी को कि इट्स माई रिलीजन, आपको वो इस बेस पे जॉब से फारिग नहीं कर सकता कि आप इस वक्त यहां से क्यों गए। अब हम अपना दीन किस ना को महदूद कर लेते हैं, ये फिर हमें पता है। तो लिहाजा इस्लाम भी दूसरों के मजहब की हिफाजत करता है। अक्सर मैं सोचती हूँ ना इस बात को भी, कि आप देखिए कि एक मुसलमान मुल्क में नॉन मुस्लिम इबादत खाने, अब क्या करे, गिरा दो? इस्लाम चाहता तो गिरा सकता था ना, नहीं, इस्लाम कहता है कि अक्ल से सोच के आओ। इसीलिए आप देखिए मुसलमान मुल्कों में नॉन मुस्लिमों की इबादत खाने होते हैं। इससे भी ज्यादा कोई लिबरल रिलीजन होगा दुनिया में? इससे भी ज्यादा इंसान दोस्त और इंसान को समझ बूझ के साथ इस्लाम में आने की दावत देना कोई होगा? तो अकलियतों की इबादत गाहों की हिफाजत कैसे इस्लाम ने की, मिनोरिटीज की मजहबी जगहों को कैसे देखा इस्लाम ने, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। हमारी 1400 साल इस्लामी तारीख में कोई एक वाक्या बता दें कि हमारी सल्तनत में किसी इबादत गाह को गिराया गया हो, किसी शख्स को जबरन मुसलमान बनाया गया हो। हमने 1000 साल हिंदुस्तान में हुकूमत की, हुकूमत करने से पहले तो सोमनाथ का वाक्या हो गया, मंदिर टूटा था, मगर हुकूमत कायम होने के बाद कितने सोमनाथ थे, कितने मंदिर थे, मगर किसी को नहीं गिराया गया, इसलिए कि वो हमारी हिफाजत में आ गया। बात वाज़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो बैतुल मक़दस की चाबियां वसूल करने आए हैं, कब, जब बैतुल मक़दस फतह हुआ, और साथ ही बैतुल मक़दस के ईसाइयों का कलीसा है, यानी उनका चर्च वहां मौजूद था। बाज़ ने कहा नमाज का वक्त हो गया, आप यही नमाज पढ़ लें। फरमाया कि मैंने यही नमाज पढ़ ली तो फिर और भी मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और तुम्हारे कलीसा का तकद्दस ज़ाया हो जाएगा। आपने इनके कलीसा में नमाज नहीं पढ़ी, इस कलीसा से बाहर निकल कर नमाज पढ़ी। सिखा रहे थे ना उम्मत को। क्या पता चला कि आज जब मौका मिले एक इंसान को तो उसको नमाज बाहर पढ़नी बेहतर है, चर्च के अंदर जाके आप नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वहां शिर्क सरेआम है। और आज के दौर में तो आप देखिए कि वो क्रिश्चियनिटी भी वो क्रिश्चियनिटी नहीं रही, ठीक है। जगह जगह आपको स्लीप की तस्वीरें दिखेंगी। तो बहरहाल आपने ये नहीं कहा कि चूंकि अब हमने बैतुल मक़दस फतह कर लिए तो ये चर्च गिरा दो, नहीं गिराया आपने। 1400 साल की तारीख में जहां जहां अल्लाह ताला ने हमको हुकूमत दी, हिंदुस्तान में कितने कलीसाओं को हमने मस्जिद बनाया, अब तो फ्रांस में बना रहे हैं। मैंने कई कलीसाओं में जुमे की नमाज पढ़ाई है लेकिन अब वो कलीसा नहीं रहे, उन्होंने फरोख्त कर दिया, हमने मस्जिद बना ली। ये तो हो रहा है कि हजारों कलीसा, कलीसा समझ रहे हैं ना, चर्च, ये तो हो रहा है कि हजारों चर्च मस्जिदें बन चुके हैं, मगर ऐसे ममालिक में जहां इस्लामी हुकूमत मौजूद नहीं, मसलन फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, चीन वगैरह, मगर इन तमाम इलाकों में जहां इस्लामी हुकूमत मौजूद थी, कोई एक मिसाल ऐसी बता दें कि जबरन किसी चर्च, किसी इबादतगाह, किसी मंदिर, किसी गुरुद्वारे को हमने बदल के मस्जिद बना दिया हो। ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलती, बल्कि ये जो बात इन्होंने कही है कि चर्च बिक के मस्जिदें बनती हैं, आपको पता है कि इस वक्त यूरोप का एक मेन इशू है। इस वक्त यूके में आपको जितनी भी बड़ी अच्छी मस्जिदें मिलेंगी ना मुस्लिम्स की, उसमें से 90% चर्च थे, और वो ह्यूज बिल्डिंग्स बनी है क्योंकि जगह की इतनी किल्लत है कि खुद खुली जगह लेकर बड़ी मस्जिद बनाना आसान नहीं है। तो चर्च क्यों बिके, क्योंकि वहां जाते ही कोई नहीं, संडे के संडे उन्होंने बेचे। और कोड़ियों के मॉल चर्च भी के, मेरी आंखों में कई मुल्कों के चर्च हैं, जिसमें एक मुझे याद आ रही है बात, स्कॉटलैंड में हम एक ऐसी जगह गए, देखते ही पता चल जाता है मस्जिद की ढब से कि ये पहले चर्च होगा क्योंकि पुरानी ईंटें, छोटी छोटी ईंटें, स्टाइल ऐसा होता है ना। तो उन्होंने बताया कि ये वो अंदर से अभी भी रिपेयरेबल थी लेकिन उन्होंने साथ साथ कुछ किया, तो उन्होंने सुनाया कि ये चर्च था, और यकीन करें कि जिसको आप कह सके रियल में कोड़ियों के मोल बिका था। जब कभी ये चंद ब्रदर्स ने मिलके वो खोला सा खरीद लिया कि चलो कहीं काम आ जाएगा इस्लाम में, तो आज वहां इतनी अच्छी मस्जिद बन गई। अब क्या हुआ है, मजे की बात देखें कि अब चर्च बिकने बंद हो गए। हुकूमत इतनी कॉन्शियस हो गई है कि अगर जिस रफ्तार से चर्च मस्जिदों में बदल रहे हैं, अगर यही रहा तो फिर चर्चों का नाम नहीं रहेगा। बंद पड़े हैं लेकिन अब बेचते नहीं है। हम जब से यूके में काम किया है, सबकी जुबान पे एक ही बात है कि कोई बड़ी जगह लेनी हो ना तो वहां एक कॉन्सेप्ट ही है कि चर्च खरीदना होगा, या कोई स्कूल, स्कूल बंद होते हैं कभी गवर्नमेंट के, वो बिल्डिंगे लोग लेते हैं क्योंकि वहां इस तरह ओपन प्लेसेस नहीं है। लेकिन वो हमेशा हमें आगे से ये जवाब मिलती है कि चर्च अब नहीं बिकेंगे, और जब चर्च बिकते थे तो बहुत सस्ते बिकते थे क्योंकि वो गवर्नमेंट की कस्टडी में होते थे, तो लिहाजा अब वो इनसिक्योर है। मैं जब भी किसी चर्च को मस्जिद बनता देखती हूँ ना, तो आप तो सोच रहे ना ये खुशी की बात है, मेरा दिल उदास हो जाता है। कैसे, मैं सोचती हूँ कि जिस दिन ये चर्च बने होंगे, जिन लोगों ने बनाए 100 100 साल पुराने हैं, उनको पता था कि इधर लोग ही नहीं आएंगे, कि आखिर हम इसके खर्चे भी नहीं पूरे कर सकेंगे, इसकी मेंटेनेंस का मसला होगा। जब लोगों ने आना छोड़ा तो चर्च वीरान हो गए, اے اللہ کبھی ایسا نہ ہو، آج سے 100 سال بعد ہماری مسجدوں کا بھی یہی حال ہو. یہاں رہ کر شاید آپ کو اندازہ نہ ہو، لیکن آج بھی ایسی مسجدیں ہیں کہ ایک نمازی بھی نہیں ہوتا. جمعے کے جمعے کھلتی ہیں اور پورا ہفتہ بند رہتی ہیں. جو اچھی ایکٹیو مسجدیں ہیں وہ بھی بہت ہیں، لیکن ایک عام روایت بنتی جا رہی ہے کہ مسلمان صرف جمعے کو پڑھتے ہیں. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ چرچ کے ساتھ سنڈے، سینیگاگ کے ساتھ سیٹرڈے، تو کہیں مسجد کے ساتھ جمعہ نہ آ جائے. اور جس تیزی سے آج مردوں میں اور باپوں میں مسجد سے نماز ہٹ کر گھر میں پڑھنے کا رواج ہو رہا ہے، یہ تبدیلی ایک دن نہ بھی آئی نا، ایک دن میں یہ چینج نہ بھی آئی، آنے والی آدھی صدی، ایک صدی میں آپ کے بچے کہیں گے جاتے ہی صرف جمعے کو. اس پہ اپنے مردوں کو احساس دلائیں کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے بچے بھی آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد یہ کہ بس ہمارا تو جمعہ، وہی جمعہ جمعہ مسجد یا عید کی عید نماز. تو یہ تو گورے بھی کرتے ہیں. یہ جو اسلام نے 5 وقت کی نماز کا وقت دیا ہے نا مسجدوں میں، اس کی حکمت ہے. کمیونٹی ورک ہوتا ہے، بیماروں کا حال پوچھا جاتا ہے، لوگوں کے رشتے ہوتے ہیں، ناتے ہوتے ہیں. مسجد کوئی دین میں کوئی نماز پڑھنے کی جگہ تھوڑی تھی. آپ دیکھیں مسجد نبوی کا ہی اگر آپ حال حلیہ سن لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مسجد تو تھی ہی، وہ مدرسہ بھی تھا، اصحاب صفا وہیں پڑھتے تھے، پھر وہاں عدالت بھی لگتی تھی، اللہ کے نبی کے بیٹھ کے مقدموں کے فیصلے اور آپ کے معاملے اور میٹنگ روم بھی تھا. مسجد ایسے تھوڑی ہوتی ہے جو آج ہم نے شوکیس میں رکھ کے مسجد کو رکھ دیا. جمعے کے جمعے کھلے گی اور بس جمعہ پڑھیں گے، چندہ جمع ہوگا، اور اس کے بعد چھوٹا سا ایک روم کھول لیتے ہیں اور اس میں بیٹھ کے نماز پڑھ لیں گے لوگ جو بھی آئیں گے اللہ کے بندے. نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. آپ کو مجھے اس چیز کی اپنی نسلوں کو فکر دینی، اور آپ ماؤں کا فرض ہے جن کے بیٹے ہیں. زبردستی کریں، پیار کریں، نرمی کا توقع کوئی نہیں رہا. آپ نے بہت لاڈ دیکھ لیا ان کے، بگاڑا آپ نے. آپ ان کو صبح پراٹھے کھلا کھلا کے بھیجتی ہیں، آپ ان کے گرم سرد کا خیال رکھتے ہیں، آپ ان کی سب، اور وہ مسجد کا یا نماز کا رخ نہ کریں. کیا کرنا ہے آپ نے ایسے بچوں کی خدمت کو؟ آپ نے سامنے ان کو دھجھٹکا دیں، خود پکائیں روٹی. تو آپ اور میں اگر اس دور میں مسجدوں کی آبادی کا ذریعہ نہ بنیں، تو ایک وقت آئے گا کہ یہی باتیں جو آج ہم دوسرے مذاہب کی سن رہے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ ہو. اور آج ماشاءاللہ باشعور مائیں ہیں، میں ایک ایسی ماں کو جانتی ہوں بلکہ ایک سے زیادہ ہیں، خود ہر نماز پہ جس پہ لے جا سکتی ہیں 3 نمازیں دن کی، 2 نمازیں، اپنے بچوں کو بس میں بٹھا کر مسجد لے کے جاتی ہیں. مرد نہیں جو جاتے تو وہ کیا کرے، وہ کہتی ہے میں نے اپنے بیٹوں کو تو خراب نہیں کرنا. کین یو بلیو ایک ماں، بلکہ ہمارے کلچر میں اب یہ بھی بڑا ان نون ہے کہ عورت جو ہے وہ مسجد میں جا کے نماز پڑھے. اب ہو سکتا ہے مسجدوں میں لیڈیز روم کھلتے ہی نہیں ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے لیے وہاں کھڑی رہتی ہیں، اور بچے جو گروئنگ ایج پہ 8, 9, 10 سال کی ایج، جو بچوں کی عادتیں ڈیولپ کرنے کی وقت ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت وہاں جاتی ہیں اور ان کو نماز پڑھا کے بس پہ جاتی ہیں، بس پہ آتی ہیں، تاکہ بچے کو اس چیز کا احساس ہو کہ یہ بھی ایک میری ذمہ داری ہے. تو ہو سکتا ہے نا یہ چیز گھر کے مردوں کو بھی ایک دن مائل کر دے. تو لیکن اگر آپ میں اس پہ کہنے ہی جٹ سو کے دیکھیے، مجبوراً گھر میں نماز کبھی پڑھنی پڑے ہو سکتی ہے، گھر میں جماعت ہو سکتی ہے، لیکن پھر مسجدوں کا کیا ہوگا؟ پھر مسجد کا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا. تو لہٰذا مسجدوں کا تقدس پامال ہو رہا ہے. میں اتنا سوچتی ہوں، اللہ تعالیٰ تیری شان، اگر اتنی مسجدیں مسلمانوں کی پرسنل ملکیتوں کی بجائے یہ تیری ملکیت ہوتی تو آج سکولوں میں دھکے نہ میں کھانے پڑتے. ہر موقع پہ کہاں پروگرام کریں، کہاں کریں. جس دن سے میں آئی ہوں اس دفعہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اس سال دورہ قرآن ہمیں ادھر سے باہر نکل کر کرنا ہے. کتنے مسلمانوں کے یہاں انسٹیٹیوٹ، کتنی مسجدیں ہیں. ہمیں تو آفرز آنی چاہیے کہ آپ نے قرآن پڑھانا ہے، بسم اللہ کرے، پورا شہر مسجدوں سے بھرا پڑا ہے. یا تو ہم نہیں پہنچ پائے یا ابھی ان کے دل میں یہ بات نہیں آئی. کیوں؟ مسلمان دیکھیں نا، میرے بھائی کا گھر ہو تو مجھے کوئی فکر ہے پاکستان جاتے ہوئے؟ میں وہاں جاتے ہوئے ہوٹل ڈھونڈوں گی، میں وہاں جا کر کسی دوسرے کو فون کروں گی آ جانا ایئرپورٹ پہ مجھے لینے. میں تو کہتی ہوں مسجد اتنا آپ کا حق ہے، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا. کون روکے گا آپ کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے سے؟ لیکن یہ جاگیریں بن جاتی ہیں اور ہم اتنے گن من ڈڈو مڈو بن جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، اب کون برا بنے. قرآن پڑھنا ہے آپ کو، نہیں ہے اتنی بڑی جگہ ہمارے پاس. ہم شہر کے نان مسلم سکولوں سے روتے ہیں، और आप देखें शहर में कितने स्कूल मिले हुए। मैं इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब उन जगहों पे जाती हूँ मैं कहती हूँ वाह अल्लाह, इनका दिल इतना खुला है तो इनको इस्लाम भी दे दे। आप नाम तो लें कि आपका होली मंथ आ रहा है, रमज़ान, आपको 10 स्कूल देने को तैयार है, लेकिन बाज़ दफ़ा उनकी लोकेशन नहीं सूट करती, बाज़ दफ़ा हमारे देसी लोगों का वहाँ जाना इजी नहीं होता। तो मस्जिद तो आप आधे मुंह से लफ्ज़ बोले लोग वहाँ पहुँच जाएंगे ना, और हम ठंडे होके बैठे हुए, हम कहते हैं ना एक जगह बस बैठ जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो इधर ही करेंगे। मैं सोचती हूँ जो ग्रज मेरे दिल में शायद अभी मैं दूसरों को नहीं दे सकी, हमारे अंदर वो आग नहीं लगी। फर्क पड़ता है, आप कहाँ बैठ के कुरान पढ़ा रहे हैं इससे फर्क पड़ता है, कितनी बड़ी जगह उससे फर्क पड़ता है। अल्लाह उतने ही लोगों को भेजता है जितनी जगह होती है। तो जब तक हम इस्लाम की जगहों को अल्लाह की मलकियत नहीं समझेंगे, दीन का रुख नहीं बदलेगा। खोलें जी, हमारी मस्जिद है, आप क्या रोकेंगे हमें कि मस्जिद में ना आए? हम यहाँ अगर गलत काम करें तो हमें पूछिए, हम कोई जाती काम करें तो हमें पूछिए, हम कोई खिलाफ सुन्नत काम करें तो हमें पूछिए, हम अपना कोई यहाँ पर्सनल बेनिफिट लेकर आए तो हमें पूछिए, हम जवाब दें आपके भी और अल्लाह के भी। लेकिन अगर अल्लाह ने आपको जगह दी, और आपको कहाँ दी, लोगों ने आपको तो नहीं दिया, लोगों ने अल्लाह के नाम पे दिया, और आप उसको अपनी जाती जागीर बना के बैठे, कल बहुत बड़ी पूछ होगी, बहुत पूछ होगी। याद रखिए वो लोग जिनको अल्लाह ने अथॉरिटीज दी हैं, कल उनकी जो बाजपुरस होने वाली है ये हम जैसे सीधे साधे लोगों की कोई नहीं है। तो लिहाजा ये दुआ करें कि अल्लाह आबाद कर दे। चले कुछ हो ही रहा हो ना, तो आप कहते हैं कि चलो जी कुछ हो रहा है, पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है। एक कमरे में हो जाए 10 कमरे तो अभी भी खाली हैं। लिहाजा हम सबको अपनी उम्मत को मस्जिद की असल अहमियत से आगाह करना है। फिर आप देखिए कि उनकी इबादत गाह में रखे हुए बुतों की हिफाजत हमारे जिम्मे होती है। दीन तो बुतों को तोड़ने के लिए आया, लेकिन जब एक अकलियत हमसे मुआहदा कर लेती है तो अब हम इसकी हर तरह से हिफाजत करेंगे। वो अपने मंदिर में अपने बुतों की इबादत करें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इबादत तो कर सकते हो लेकिन ये बुत हटा दो। क्या समझ आई? इतनी आजादी, आप उसके शरीक नहीं है बीच में। अब ये क्या तावन अल इस्मी हो गया कि वो वहां बुत पूज रहे हैं और आप उनको कुछ नहीं कह रहे? नहीं, देखिए मैं आपको सच बताऊं, अगर आप इस्लाम का मिजाज समझे हैं ना, अगर आप किसी मुल्क में सही इस्लाम नाफिज ही कर दें तो ये खुद ही टूट जाएंगे बुत। ये इमारतों के मंदिर क्या करने होते हैं, ये इमारतों के गुरुद्वारे क्या हैं? लोग इस्लाम का इतना खूबसूरत रूप देखेंगे कि वो थोड़े दिन बाद खुद ब खुद बदलेंगे, और लोग निकलते जाएंगे तो आप देखिए कि उनके फिर वो इबादत खाने खुद ही वीरान होंगे। हर जगह मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम शऊर बेदार करता है, शऊर बेदार करता है, और आज हम शऊर से ऊपर हैं, ऊपर उठ के जीते हैं। हमने इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया हर गलत चीज को, हम कहते हैं अब छोड़ो ना, अब क्या करें, कौन बुरा बने, कौन करे। और याद रखिए कि अल्लाह के नबी की पूरी जिंदगी हक के लिए लड़ते हुए गुजर गई। हम हक के लिए लड़ते नहीं हैं, कुड़ते हैं बस, जलते हैं बैठ जाते हैं, हम कहते हैं छोड़ो कौन बुरा बने। अल्लाह ताला हमारे दिल में इस्लाम का दर्द डाल दे। फिर इसी तरह आप देखिए कि यहाँ ये बात पढ़ने के आपके जिन में कोई बात है, जो भी बात हुई इसमें से कोई शेयर करें कुछ।
क्या हमारे दिलों में उस तरह ईमान ही नहीं है, या हमारी कोशिशों में कमी है कि हम उस तरह का भी कोई काम कर नहीं पा रहे?
मुझे लगता है हम इस पे बड़े मुतमईन है कि हम यहाँ आराम से आ रहे हैं ना। मुझे अपने आप को लगता है कि अभी वो दर्द नहीं है लोगों का मेरे अंदर जो आना चाहिए। जो है कोशिश वही पूरी है, उसी पे खुश हैं जी। आप मरियम,
मुझे इधर का तो इतना पता नहीं है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा है कि लोगों ने इनको जगीदार मतलब अपनी विरासत का हिस्सा बना लिया, इससे कमाई का जरिया बनाया। मसाजिद हर एक ने अपने लिए 2 घास की जमीन खुद ही खरीदी, अपने लिए मस्जिद बनाई हुई है। एक मोहल्ले में तकरीबन 10-10 15-15 मसाजिद है, लेकिन उधर भी प्रोग्राम नहीं होते ब्राय नाम, खास करके जब रमजान आता है तो एक ही साफ होती है वो मर्दों की, वो भी ब्राय नाम होती है। तो तलामियाँ तो बढ़ाई जाती हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसा कि शोर के साथ होना चाहिए। लोग आराम कर रहे हैं बस, काफी ना अपनी इबादत से। मस्जिद एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला का घर है, वहां से अल्लाह ताला के मतलब कुरान की आवाजें वगैरह वो भी नहीं, अब तो वहां पे भी स्पीकर पे पाबंदी लग चुकी है कि मोहल्ले में भी नहीं पता चलना चाहिए कि मस्जिद है भी या नहीं, लोग उठ के घरों से बाहर आ रहे हैं।
आपके मुल्क में इस वक्त दीन का काम और भी मुश्किल हो गया।
स्पीकर जब बंद हो गया तो बहुत बुरा हाल हो गया, तकरीबन साल हो रहा है कि स्पीकर पे पाबंदी लग चुकी है, सिर्फ एक ही स्पीकर छत पे लगेगा बस।
जी
मुझे 2 साल पहले दौरा कुरान के सिलसिले में अपने मोहल्ले की जो मस्जिद है, मैं और उनका जी आंसुआर जिम्मेदार थे उस एरिया में करवाने के लिए, तो हमने बहुत कोशिश की मुख्तलिफ जगहों पे कि कोई हमें जगह मिले, कोई पहले सबसे पहले हमने मस्जिद में कोशिश की, उन्होंने ऊपर जी ने अपने अबू से या भाई से किसी से कहा कि उनसे बात भी करवाई, लेकिन उन्होंने इतना नेगेटिव प्रोपेगंडा किया, यहाँ तक कि जो औरतें वहाँ आती हैं उनके जहन में भी गलत बातें डाली कि कौन 3 घंटे 4 घंटे कौन इतने घंटे बैठ सकता है, ये तो सिर्फ बातें हैं कुरान पढ़ने, इस तरह थोड़ी कुरान पढ़ा समझा जाता है कि 3 घंटे थक जाए और कुरान एक दिन में कहाँ, ये यानी उन्होंने जो हो सका उन्होंने कर करके आखिर में हमें यही पता चला कि कोई वो हमसे सुनना भी नहीं चाहते कुरान। तंग आके हमें वहाँ चर्च में मिल गया कमरा, हमने वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप ले लें, लेकिन वो बहुत कोशिश के बावजूद शुरू में 1 हफ्ता तक तो कुछ औरतें आई, उसके बाद वो भी नहीं आई, सिर्फ 2-3 ही रह गई। फिर मैंने हमें पता चला कि शायद वो चर्च की वजह से लोग नहीं आते, उनके जहनी इतनी पसमंदगी है कि वो समझते हैं यहाँ जाके कुरान कहाँ पढ़े, तो खाली घर एक था वहाँ रिलेटिव है उनका जी के, उन्होंने कहा कि हमारे घर में कर ले, हमने वहाँ भी वो औरतों को बार बार बुलाया लेकिन 1-2 के अलावा वहाँ भी कोई नहीं आई। फिर मैंने कोई कहे कि वो दूर है वहाँ से रास्ता ऐसा है, तो मैंने कहा चले मैं अपने घर में करा लेती हूँ, उनको जी ने पहले अपने घर का फिर कहा वहाँ कर ले, तो कहते वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं हमसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती हैं जो तीसरे चौथे ताशे पे, मैंने कहा मेरे घर में ठीक है चले वहाँ बाकी के, यानी हमने 15 दिन तो 3 जगह शिफ्ट की, आखिरी 15 दिन फिर मैंने अपने घर में कि यहाँ तो हाइस है ना लिफ्ट है कोई मसला, वहाँ भी वही 2 लोग ही आए। इस तरह हुआ मुझे ये इतना ये एक्सपीरियंस हुआ कि उस मैं जहाँ फ्लायर लगाती थी अगर बस स्टॉप पे पता चलता था पीछे से किसी ने उतार दिया, फिर जाके लगाना फिर कोई आता था।
देखिए हमारे जहनों में इसका तस्वीर ही नहीं है ना, इस जमूद को तोड़ा कैसे जा सकता है, इसका इलाज क्या है, हम इसका जिक्र तस्करा कर भी नहीं, इलाज क्या है।
इस साल मैं सोच रही हूँ अल्लाह से दुआ भी कर रही हूँ कि मैं उनको ही जाके कहूँ कि आप अपनी मस्जिद में कराएं, आप इन्हीं औरतों को खुद कराएं, अगर आपको हेल्प की जरूरत है तो हम कोई ना कोई आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि किस तरह कराया जाता है, आप पढ़ाएं तो सही, इनको बताएं तो सही कुरान के अंदर क्या है, कोई जरूरी तो नहीं कि आप अपनी किताब के लिए उनको इकट्ठा करते हैं हफ्ते में एक दिन अल्लाह कर दिया और वो कुछ 2-4 दुआएं पढ़ा के उनको वापस कर देते हैं, उनको असल दीन की रूह कुरान और हदीस है उस तक आप लोगों को आने नहीं देते।
बस अल्लाह ताला हिदायत दे। और किसी के जरिए में कोई डिफरेंट पॉइंट है जी आप पीछे से। यानी मरने दम तक बंदा अपनी जहालत की सजा भुगतता के जनाजा ही नहीं पढ़ाना उन लोगों का जो हमारी मस्जिद में आते नहीं थे जिंदगी में।
इधर का वाकया आपको देखा, हालांकि मस्जिद तो किसी की मलकियत नहीं है, कोई भी मुसाफिर भी आके पढ़ सकता है, उसके मुंह पे नहीं लिखा ये कौन ना कीड़ा आया तो पढ़ना ही है।
आपको पता कि नूरुल कुरान इस वक्त एक वो वही स्टेटस पे है जिसमें मेंबर्स लिए जाते हैं, आप में से सबको मेरे हाले पता तो कम से कम होना ही चाहिए ना कि सेम वही कि आपको जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलती है मेंबर, तीसरा साल है मेरा ख्याल है, और जो लोगों से जो मुझे ये लोग बात बता देते हैं वो यही कहते हैं कि नए लोग और जो है जो नहीं आते वो आने को आ रहे हैं आ भी रहे हैं, लेकिन अपने लोग हैं वो सिर्फ इस खौफ से नहीं जाते कि मस्जिद वाले कहते हैं कि हमने आपका फिर जनाजा नहीं पढ़ाना। ये लास्ट वीक किसी ने हमें कहा कि उस्ताजा ये स्कूल है ना अगर ये मस्जिद हो ना तो बेशुमार लोग आएंगे, क्योंकि लोगों को डर ये है कि कल हम मर गए तो फिर हमारा जनाजा कौन पढ़ाएगा, तो ये तो मस्जिद नहीं है और मस्जिदों वालों की जरूरत पड़ेगी। ये हालात है, यानी अब ये लोग जो भी कहते हैं या मैंने आपको जो तोड़ फोड़ के बात सुनाई है लेकिन इसमें किसी हद तक रियलिटी है, लोग दिल जान से आपको सपोर्ट करते हैं लेकिन वो अपना नाम नहीं लिखाते, हमें भी लिखाए हैं दूसरी जगह भी लिखाए हैं, 3 साल से ये गेम चल रही है, उधर से वो कहते हैं ख़त्म करो मस्जिद वाले ख़त्म नहीं करते, इनको कहा दे आप खुद जाके करें, कहते हैं हम क्यों बुरे बने, कोई गया भी है तो लड़ाई होके आई है, मस्जिदों वाले काटते नहीं है, और आप कहते हैं कि जब 2 जगह एक का नाम आ जाए तो फिर दोनों को ही नहीं मिलता, हो सकता है उन लोगों का ना ही मिल रहा हो जिन्होंने इधर अपने नाम लिखा, हमारे पास उनके पेपर लिखे पड़े हैं लेकिन हम सोचते भी नहीं। मैं सोचती हूँ कि जिंदगी की ये चांदी घुल रही है, हम हर एक साल को अगले साल पे अगले साल को तीसरे पे डालते हैं। और मैं सोचती हूँ कि ये भी हमारी खयानत है खुद के साथ, जिन जगहों से जिन चीज़ों को आप सपोर्ट ही नहीं करते, जिनसे आपको पता है कि वहाँ सरीहन शिर्क है सिर्फ इस नाम पे कि ये गांव की मस्जिद है, ये बिरादरी। कई लोग तो इस बात पे तो वो दिल में गुस्से रख के बैठे हैं ना कि आप सारी ज़िंदगी हमारे पास आते रहे, अब आप कहाँ चल पड़े। तो ये कोई बिरादरी है या ख़ानदान है या कोई लेन देन की बातें हैं, तो बस ये बेशौरी की बात है। और ये चीज़ मैंने कभी कहीं नहीं देखी, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। 10 साल तक अमेरिका में मैं रही हूँ, ह्यूस्टन शहर में 70 मस्जिदें तब थी, अब तो मेरे लिए 100 से ऊपर हो गई होंगी। कभी फिरकेबाजी की बात नहीं है वहाँ, पूरे शहर की मस्जिदों में 70 थी ना, तो उसमें मैं उंगलियों पे गिन के बता सकती हूँ कि 8 से 10 मस्जिदें पर्सनल थी पुरानी, जिसमें एक हमारे अपने जो हम रहते हैं वो भी मस्जिद आती है कि जिसने किसी ने शुरू से बनाई, अपनी एक सोच को प्रमोट किया, या एक दो और मस्जिदें। सारी मस्जिदें ISGH एक सोसाइटी है, इस्लामिक सोसाइटी ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, उसके अंडर है। सबका इमाम खुतबे का पीछे से स्केड्यूल आता है, कौन उधर, यानी एक सिस्टम कैसे चल रहा है। और हर मस्जिद में आमीन भी होता है, रफुल यदैन भी होता है, हालांकि वो मोस्टली मेजोरिटी खुद को हनफी मसलक कहती है, ये इशू ही नहीं कभी आए। सब मस्जिदें कूल काम ठंडील, और शामें भी आबाद, रातें भी आबाद, वहाँ फैमिली नाइट्स भी हो रही हैं, यूथ प्रोग्राम भी हो रहे हैं, वहाँ तो बहुत एक्टिव है मस्जिदें। मैंने तो यही देखा है 10 साल तक, शायद जिस शहर में मैं थी ऐसा थे, और मैं अभी फिर होके आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जाके आपको एक खुशबू आती है, कभी आप एक मस्जिद में बैठे तो आपको ये नहीं गुस्सा आता कि दूसरी में क्यों नहीं गए, इल्ला शे ये जो 10 मस्जिदें हैं उनके दिलों में आता हो या एक दूसरे, लेकिन ये तो ह्यूमन वीकनेस हो ही सकती है, लेकिन ये फिजा नहीं है जो यूरोप में है वल्लाही। और उसकी बड़ी वजह मुझे पता समझ आती है, तालीम का होना या ना होना। जो दुनियावी तौर पे पढ़ लिख जाते हैं उनके जहन कम अज़ कम खुल जाते हैं, और मैंने उनको इतना लिबरल पाया, इतने साल हम रहे हैं, हमारे उनके साथ इतने अच्छे टर्म्स थे, इवन जो दूसरी मस्जिदें नहीं उनके अंडर, उनके साथ भी उनके टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तो बहरहाल ये जरूरत है हमें इस पे करने की बात। जी जी
ठीक है ना, तो फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को तरीकों को छोड़कर इनके पीछे क्यों चलते हैं, और इनके तरीके क्या अलग थे उनसे।
फिर अगला कोर्स इस पे कर लेते हैं, चारों इमामों की जिंदगी पे, मेरे दिल में है, यहाँ यूरोप में तो इसकी बहुत ज़रूरत है। जब हमने 4 इमामों के हालात पढ़ने हैं ना, तो हमें खुद ही शर्म आनी है, क्योंकि वो चारों एक दूसरे से इतने प्यार करने वाले थे, वो एक दूसरे के उस्ताद और शागिर्द थे। आज भी देखिए लोग दीन का एक काम करने वाले दुख को दूसरे के खिलाफ ही समझ लेते हैं, ऐसे ही दिल में, हालांकि चाहे दिल में उनके कोई गुस्सा गिला ना हो, वो दीन को ही सर्व कर रहे होते हैं, कोई एक एंगल से कर रहा है, कोई दूसरे से कर रहा है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको कराएंगे इसके ऊपर कोर्स। जी वो तो घर में रहते हुए इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुखालफत नहीं की, इख्तलाफ झगड़ों में नहीं बदला ना। हाँ जी, तो बहरहाल यही दुआ करके इस मौजू को रैप अप करते हैं कि अल्लाह ताला हमें शऊर दे दे, हम अपनी जिंदगियों को और अपने रिसोर्सेज को जाया ना करें, बल्कि इससे बेहतरीन फायदा लें।